ओम शांति। तपती धूप और रेगिस्तान का सफर, पसीने से तरबतर एक व्यक्ति भर दोपहर में गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसके मन में विचार आया और क्रोध जागा। उसने आसमान की तरफ देखा और शायद कोई परमात्मा ऊपर बैठा हो, उससे कहा, हे ईश्वर, यहां जल क्यों नहीं है? अगर यहां पानी होता तो यह सारा इलाका हरियाली से भर गया होता। कोई क्यों यहां पानी नहीं लाता? कितनी अच्छी हरियाली होती और कितनी ठंडी हवाएं होती। जैसे ही वो ये बोलता है, अचानक देखता है कि सामने एक कुआं है। उसे आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कुआं कहाँ से आ गया, क्योंकि इस रास्ते से वो पहले भी कई बार गुजरा था और ये कुआं उसे कभी नजर नहीं आया था। कुएं के समीप जाता है, कुआं लबालब भरा है पानी से। फिर से ऊपर देखता है आसमान की तरफ, परंतु धन्यवाद का भाव नहीं है। वो कहता है, पानी तो ठीक, पर निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और जैसे ही वो कहता है, अचानक देखता है कुएं के पीछे एक बाल्टी है और एक रस्सी है। उसे इतना आश्चर्य होता है, क्या भगवान वास्तव में मेरी सुन रहा है? फिर ऊपर देखता है, कहता है, रस्सी और बाल्टी तो ठीक, पर ढोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो देखता है पीछे से कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। पीछे देखता है तो ऊंट। अब वो घबरा जाता है, ये सोचकर ये हरियाली बनाने का काम कहीं मुझे ना करना पड़े, और वो तेजी से भागने लगता है। वो भागता है भागता है, पर कागज का एक टुकड़ा उड़कर आता है और उसकी पीठ से चिपक जाता है, और उसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें रस्सी दी, मैंने तुम्हें बाल्टी दी, मैंने तुम्हें पानी निकालने के लिए एक ऊंट भी दिया, अब हरियाली बनाने का काम तुम्हारा है, कहां भागे जा रहे हो? मैंने तुम्हें चारों ही बातें दे दी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, और ये चारों ही बातें देने के बाद भी तुम कर क्या रहे हो? खत लिखा है और भगवान के हस्ताक्षर है नीचे, मैंने भी तुमको चारों बातें दी है, तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इसीलिए कौन तैयार हो रहे हो उधर? तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हम कर क्या रहे हैं? स्वयं भाग्य विधाता इस समय कहाँ है? हमारी मुट्ठी में है। हुजूर हाजिर है और साहेब राजी है। दो शब्द है मुरली में, हुजूर हाजिर पर कब, साहेब राजी पर कब? इन दो प्रश्नों का उत्तर मुरली में है, और जो इनको राजी उसको राजी कर लेता है, उनकी निशानियां क्या क्या है? पिछले रविवार की मुरली में हमने देखा था, क्या देखा था? जो सच्ची दिल है, जिनकी उनकी निशानियां थी पांच। पहली, बिंदु स्वरूप में सहज स्थित होंगे, पॉइंट स्वरूप। दूसरा, कर्म कैसे होंगे, राजयुक्त योगयुक्त युक्तयुक्त। तीसरा, उनके निकला हुआ तीर, दिल का तीर दिल तक जाएगा, दिमाग का तीर दिमाग तक। चौथा, चश्मा कौन सा पहनेंगे, वो आलस्य का एक चश्मा है और दूसरा है विशेषताओं का, पिछले संडे की मुरली। कौन किसकी उन्नति? सौ उन्नति का यथार्थ चश्मा, जिसमें वो क्या देखेंगे, मुझे बदलना है, दूसरा बदले या ना बदले, और पांचवा जो दिल वाले हैं उनको दिमाग की लिफ्ट स्वतः मिल जाएगी। ये निशानियां थी ट्रू हार्ट्स की आज की अव्यक्तवाणी। क्या गिनाया बाबा ने आज, कौन किसको मिलने आ रहा है, सामने कौन बैठे हैं, प्रिंस प्रिंसेस साहबजादे और साहबजादिया, और वो खुद कौन है, वो स्वयं कौन है, साहेब, सच्चा साहेब, सच है वो, सच की महिमा है, सच सत पाप, सत टीचर और सत गुरु। क्या कर रहा है वो आकर, सत धर्म की स्थापना कर रहा है, सतयुग की स्थापना कर रहा है, और क्या कर रहा है, सत्य नारायण की कथा सुना रहा है। किस लिए सुना रहा है, हमें सत्यनारायण बनाने के लिए। सत्य की हमेशा महिमा है, इसके लिए उसे राजी करने के लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है वो है जीवन कैसा हो, सत्य पर आधारित हो। जिसके जीवन में झूठ है, छल है, षड्यंत्र है, निरंतर ब्रेन प्लानिंग करते रहता है, किस बात की किसको कैसे फंसाऊं, ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं भगवान को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो स्वयं ही क्या है, सुंदर है, सत्यम है वो, इसलिए उसे असत्य प्रिय नहीं। उसके राज्य में वही आ सकता है जो सत्य है। अंग्रेजी कवि लिखता है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कैसा जाल हमने बुन दिया दूसरों को फंसाने के लिए कि उस जाल में हम खुद ही फंस गए। ऐसा जाल बुना कि जिस जाल में खुद हम ही फंस गए। जब जब हम दूसरों को फंसाते हैं, जो जो हम संसार में भेज रहे, जो जो हम दूसरों के साथ कर रहे, वो कई गुना होकर हम तक ही आएगा। जिस जो जो दूसरों की निंदा कर रहा है, एक दिन वही निंदा तुम्हारे पास आएगी। जो दूसरों को छल रहा है, वही छल उसको छलेगा। इसलिए भगवान को कौन प्रिय है, जो सत्यवादी है, जो सच्चे है, जिनका जीवन सत्य पर आधारित है। जीवन में पीछे मुड़कर देखकर जिनको खुशी होती है कि हमारे जीवन में कहीं पर भी आज तक कोई असत्य था ही नहीं, कितनी बड़ी खुशी है ये। हमने अपने जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं, कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये संसार कैसा है, मुरलियों में क्या आता है, कौन सा संसार है ये, झूठ। ये संसार कैसा है, ठगों की दुनिया है ये। ये संसार कैसा है, झूठ का बाजार है ये, झूठ की मंडी लगी है यहां पर, ऐसा ये संसार है। ऐसे झूठे संसार में सत्य पर चलना, सत्य के मार्ग में चलना, ये साहस का कदम है। जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ बोल रहे हैं, झूठे व्यक्तित्व है, सूडो पर्सनैलिटीज, अंदर बाहर अलग है। ऐसे लोगों को क्या कहा है बाबा ने, जो अंदर एक बाहर दूसरे, खौफनाक, डेंजरस पीपल। ऐसा ये संसार है। तो सबसे पहली चीज जो आज की मुरली से धारण करनी है वो है सत्य। महात्मा गांधी ने लिखा है कि मुझे पता नहीं भगवान क्या है, परंतु सत्य जरूर भगवान है। भगवान सत्य है कि नहीं पता नहीं, परंतु सत्य स्वयं ही भगवान है। सत्य में वो शक्ति है, वो पावर है। झूठ बोलने वाले को बहुत याद रखना पड़ता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग झूठ बोलना पड़ता है। सत्य को एक ही स्टेटमेंट है बस, कहीं जाओ वो एक ही स्टेटमेंट। तो सबसे पहली चीज सत्य, चाहे संसार कितना भी झूठा हो, हमें सत्य को नहीं छोड़ना है। एक गांव में एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं बंदर खरीदने आया हूं। उस गांव में इतने बंदर थे, इतने बंदर थे, इतने बंदर थे। वो कहता है कि एक बंदर मुझे दो, मैं 10 रुपए तुमको दूंगा। सारे लोग बंदर को ढूंढने में लग गए, उस गांव में ढेर सारे बंदर थे, और उसने 1000 बंदर खरीद लिए। बाद में उसने कहा कि अब मैं 20 रुपए दूंगा और बंदर खरीदूंगा। तब तक बंदरों की संख्या थोड़ी घट गई थी, फिर भी लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर बंदर लाए और 20 रुपए में उसको बेचे। कुछ समय के बाद बंदरों की संख्या और घट गई, उसने कहा मैं अब 30 रुपए दूंगा, मुझे बंदर दो। बंदर की संख्या भी बहुत ज्यादा घट गई थी, फिर भी लोगों ने कोशिश कर करके बंदर खरीद के लाए। फिर उसने कहा मैं 50 रुपए दूंगा बंदर। तब तक तो बंदर बिल्कुल ना के बराबर थे, पर उसने कहा मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरा ये जो सहायक है ये बिजनेस को संभालेगा। बॉस जाने के बाद जो असिस्टेंट है वो कहता है, जब लोग देखते बंदर अब रहे ही नहीं, तो वो कहता है मेरे पास जो पहले से बंद बंदर है वो मैं तुमको बेचता हूं 35 रुपए में, और जब बॉस आ जाएगा तो उसको 50 रुपए में तुम बेच देना। सब मान जाते हैं, सब अपना जमा पूंजी सब कुछ लगा के बंदर खरीद लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद ना वो असिस्टेंट है ना ही वो व्यक्ति, गांव में केवल बंदर ही बंदर है, दोनों ही गायब। ये दुनिया कैसी है, ठगों की दुनिया है। नई नई स्कीम्स है यहां पर जो क्या करती है, ठगती है, अच्छे अच्छे को भी ठग लेती है, पता ही नहीं चलता है। इतनी सारी स्कीम्स आती रहती है और भोले भाले लोग फंस जाते। फोन आता है, बैंक से बोल रहा हूं, नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। बैठे बैठे अकाउंट चट। तो सबसे पहली धारणा सत्य, जहां जहां जीवन में झूठ है उसको उखाड़ कर फेंक देना है। जिस संबंध में झूठ है, जिस बिजनेस में झूठ है, इसको कहा जाता है मंकी बिजनेस। जो कहानी सुनाई इसको कहते हैं मंकी बिजनेस, छल वाला बिजनेस। जहां जहां बिजनेस में छल हो रहा है, जीवन में छल है, जीवन में झूठ है, संबंधों में झूठ है, बोल में झूठ है, विचारों में झूठ है, कल्पनाओं में झूठ है, काल्पनिक जीवन जी रहा है व्यक्ति, ख्याली पुलाव बनाते रहता है, ऐसा होगा वैसा होगा, वो भी मिथ्या है। धर्म की पहली कसौटी है सत्य। तो सबसे पहली बात ये आज की मुरली से। दूसरा, बाबा ने अपना कौन सा टाइटल बताया, वो कौन है, दाता। इसलिए तुम भी क्या हो, दाता। दाता हो, देने वाले हो, भरपूर हो, धनवान हो, संपन्न हो। किन बातों से, ज्ञान से। ऐसा कोई राज ना हो ज्ञान का जो हमें ना पता हो। नीचे मुरली में कहा है ड्रामा के तुम कौन हो, मास्टर रचयिता हो, अर्थात तुम ड्रामा रचते हो, अपना ड्रामा तुम खुद बनाते हो। हम ये नहीं कह सकते ड्रामा में जो होगा, ये हमारा वाक्य नहीं। हमारा वाक्य क्या है, अपना ड्रामा मैं खुद रचूंगा। मास्टर नॉलेजफुल हो, ड्रामा के रचयिता हो और संपन्न हो। ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। तुम्हें सब कुछ दे दिया गया है, सब कुछ। तो पहला दाता, दूसरा भाग्य विधाता है वो, तो तुम्हें भी भाग्यवान उसने बनाया है। कितनी बातें थी भाग्य की, धन, कौन कौन सी भाग्य की बातें थी? पानी दे दिया, बकेट दे दिया, रस्सी दे दी और ऊंट भी दे दिया। काम क्या करना है? अब हरियाली लानी है। तैयार हो? अगर तुम तैयार नहीं हो तो संसार का विनाश कैसे होगा? विनाश तुम्हारे कारण रुका हुआ है। तुम तैयार नहीं हो इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। जो अंत वाले तैयार नहीं हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। भगवान का आरोप है। तुम तैयार नहीं हो इसलिए वो तैयार हो गए। तुम तैयार नहीं हो इसलिए विनाश रुका हुआ है। तुम तैयार नहीं हो इसलिए क्या होगा? फिर और एक बात होगी, धर्मराज की सजाए। तो भाग्य का सितारा चमकता हो मस्तक पर। सबसे पहला भाग्य कौन सा दिया? तन का। दूसरा मन का। तीसरा धन का। और चौथा जन का। दो भीतर के हैं, दो बाहर के। एक दिखने वाला है, एक अदृश्य जो भीतर है। दो बाहर के है। एक स्थूल वस्तु है, एक व्यक्ति है। तो सबसे पहला भाग्य कौन सा मिला? पहले तो धन्यवाद उसको कि उसने ये सब दिया। तो शरीर का कौन कौन सा भाग्य है? शरीर का क्या भाग्य है? बड़े भाग मानुष तन पायो। सबसे पहला भाग्य कि जब संगम युग पर भगवान धरा तल पर आया तब हम उससे मिले। किसके आधार से मिले? इस शरीर के आधार से। यह शरीर ने हमें भगवान से मिलाया, इसलिए यह शरीर बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, मोस्ट वैल्यूएबल मूल्यों में आता है। तो सबसे पहला भाग्य इस तन का भाग्य कि यह तन है। दूसरा भाग्य, तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहे, मुख बोल पा रहा है, हाथों से काम कर रहे, पैरों से चल रहे, ये भाग्य। उन लोगों को देखो जिनके पास, जो देवांग विकलांग है, उनसे तो हम बहुत भाग्यशाली है। तीसरा भाग्य शरीर का, क्या भाग्य है इस शरीर का? ये शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं है। ये शरीर कैसा है? स्वस्थ है, रोगी नहीं है। ये भी भाग्य है। निरोगी रहना बहुत बड़ा भाग्य है संगम पर। जिसके शरीर में कोई भी रोग नहीं, जिसे किसी भी दवाइयों का आधार नहीं, सहारा नहीं, ऐसा शरीर, जिस शरीर में फुर्ती है, जिस शरीर में कोई रोग नहीं, जिस शरीर में थकावट नहीं है, जिस शरीर की निद्रा बहुत अच्छी है। और शरीर का क्या भाग्य है चौथा? सोचो, अभी अभी सोचो। ये शरीर सेवा में लग रहा है, इससे बड़ा और क्या? संसार के लोग शरीर से क्या कर रहे हैं और हम शरीर से क्या कर रहे हैं? यहां विश्व कल्याण का कार्य चालू है, उस विश्व कल्याण के कार्य में ये शरीर समर्पित है। ये कितना बड़ा भाग्य है। संसार के लोग शरीर में शराब डाल रहे, नशीले पदार्थ डाल रहे, विकारों में झोंक रहे शरीर को, और हम क्या कर रहे हैं इस शरीर से? भगवान के द्वार पर अर्पित कर दिया है उसको। पांचवा और शरीर का क्या भाग्य है? ये शरीर तपस्या कर रहा है। तपस्या भी किस आधार से कर रहे हैं? शरीर के आधार से। ये शरीर तपस्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। पर आज की मुरली में बाबा ने किस भाग्य की चर्चा की है? कर्म भोग अगर आ जाए। कर्म भोग अर्थात क्या? शरीर के कर्म भोग में कौन कौन सी बातें आती है? सबसे पहले बीमारी। दूसरा, शरीर के कर्म भोग में कौन कौन सी बातें आती है? दर्द। तीसरा, चोट, कोई एक्सीडेंट। और क्या? शरीर के कर्म भोग। बीमारी अलग चीज है, चोट लग जाना, दर्द होना अलग चीज है, और कोई शरीर का कोई अंग काम ना करना, या शरीर में कमजोरी, वीकनेस, और क्या? संबंध। शरीर की बात चालू है। शरीर के कर्म भोग। बाबा ने बीमारी की तो चर्चा ही नहीं की, बीमारी का तो नाम ही नहीं है मुरली में। कर्म भोग शब्द है बस, शरीर का कर्म भोग। तो बीमारी एक भाग है शरीर के कर्म भोग का, बीमारी ही सब कुछ नहीं है। ऐसा अगर हो तो भी क्या वो कर्म भोग पुरुषार्थ में प्राप्ति में विघ्न नहीं हो। ये किस बात की निशानी है? उस आत्मा की ये निशानी है जिसमें जीवन भर भगवान को राजी किया है। चार बातें बताई और चारों ही बातों का सार एक ही था कि कौन राजी कर सकता है हुजूर को, जो क्या कहते हैं, हाँ जी करो तो हुजूर हाजिर है, सच्ची दिल रखो तो साहेब राजी है, सच्ची दिल और यस बॉस। हाँ जी, यस माय लॉर्ड, ये दो विधि है उसको राजी करने की। तो शरीर में कर्म भोग आएगा, क्योंकि इतने जन्मों में हमने इस शरीर से क्या क्या किया हमें पता नहीं है। इस शरीर ने पता नहीं कितने लोगों को दुख दिया है, कितने जन्मों में। इसीलिए शायद इस शरीर से भी हमको दुख मिलता है, बीमारी घेर लेती है, बीमारी पकड़ लेती है। कल परसों की मुरली थी, 63 जन्म की बीमारी है, संभाल नहीं हुई, इसलिए नासूर हो गए, इसलिए बीमारी घर कर गई। अविनाशी बाप के अलावा, सर्जन के अलावा ये बीमारी कोई दूर कर नहीं सकता। बाप को याद नहीं करते परसों की मुरली तो घबराहट होती है। ये घबराहट भी क्या है? शरीर की ही है। अचानक हार्ट बीट, एंग्जाइटी, फियर, बेचैनी। तो बाबा ने कहा कर्म भोग होगा फिर भी वो विघ्न ना होगा, पुरुषार्थ में प्राप्ति में कर्म भोग होगा फिर भी क्या वो बाधा नहीं होगा पुरुषार्थ में। और क्या कहा? ऐसी आत्माएं कर्म भोग का क्या करेगी? वर्णन नहीं करेगी, कर्म भोग के कहानी का विस्तार नहीं करेगी। मेडिकल में एक टर्म है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक वो लोग होते हैं जिनको ये पक्का विश्वास होता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, पर रहती कोई भी नहीं। और ये वो पेशेंट होते हैं सभी डॉक्टरों के पास जाते ही रहते और अपनी बीमारी का दिन रात वर्णन करते रहते और सभी को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं कोई सिंपल वाली बीमारी नहीं है, हमें कोई बड़ी वाली बीमारी है, अच्छी वाली, एकदम भयानक किस्म की। कितना भी उन्हें कन्विंस करो, कितना भी उनके रिपोर्ट्स कराओ, वो हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सनैलिटी वो खुद मेडिकल की स्टडी करते रहते हैं, बीच बीच में जाते हैं अपेंडिक्स की स्टडी करते हैं, अपेंडिक्साइटिस में कैसा दर्द होता है, बराबर वैसा ही दर्द फिर उनको होने लगता है और वैसा ही दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते कि यहां बराबर दर्द हो रहा है। सारी जांचें निगेटिव होते तो अगर उनको कहा जाए ये तुम्हारी बीमारी शरीर की नहीं है मन की है, उन्हें डॉक्टर दुश्मन नजर आने लगता है, तो ये ठीक नहीं है, सेकेंड ओपिनियन बिल्कुल ठीक नहीं है ये। वो घूमते ही रहते हाइपोकॉन्ड्रियाक्स। एक विदेश की कोई बहन थी, जोक है शायद, वो सभी डॉक्टरों को कहती थी कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है बहुत, और सब लोग उसको कहते थे तुमको कुछ भी नहीं है। जब वो मर गई तो उसने अपने कब्र में लिखा, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियाक्स। हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सनैलिटी क्या करती है? अपने दिन रात बीमारी का ही वर्णन करती है। और भगवान को जो राजी करने वाले वो क्या करते हैं? वो चिल्लाते नहीं है, चिल्लाते हैं। चिल्लाना अर्थात कंप्लेंट, अपनी ही बीमारी जो है नहीं उसी की कंप्लेंट करते रहते, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये दर्द नहीं होता ना घुटनों में तो हम 3 घंटे तो आराम से बाबा की याद में बैठ जाते। ये घुटनों के दर्द की वजह से सारा योग और पुरुषार्थ रुका हुआ है, संपूर्णता में बहुत बड़ी बाधा है ये घुटना। ये बीमारी है इसलिए नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ये कर्म भोग भी क्या बन जाए तुम्हारा, कर्मयोग और क्या बन जाए, सेवा के निमित्त बन जाए। हमने देखा दादी जान की जब थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग समय पर एडमिट थे, पर जहां जहां जब जब भर्ती थे वो पूरा हॉस्पिटल का पूरा वातावरण ही बदल जाता था, वहां के डॉक्टर्स, वहां की नर्सेस, वहां का सिक्योरिटी, वो हाउसिंग की स्टाफ सब 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 महान आत्माओं की बीमारी भी क्या बन जाती है, सेवा का कारण बन जाती है, सेवा के लिए निमित्त बन जाती है आत्माओं की। इसलिए कर्म भोग तो होगा, पर क्या करना है, विघ्न ना बने। कर्म भोग होगा परंतु क्या बन जाए, सेवा के निमित्त। कर्म भोग होगा परंतु वो चिल्लाने का साधन ना बन जाए, कंप्लेंट का साधन ना बन जाए। जो भी बीमारी आए क्या करना है उसका क्या करना है, मुरली अव्यक्त वाह व्याधि वाह गुणगान करो, वो खुशी खुशी से चली जाएगी। बीमारी आई है चली जाएगी, और बीमार कोई हम ही नहीं है, हमसे ज्यादा दर्द वाले दुखी संसार में लोग है। हमारी बीमारी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है, अपनी बीमारी के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा घेरा बना लेता है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मुझे सब लोग पूछने आए। हाइपोकॉन्ड्रियक जो होते हैं वो उनका मुख्य पर्पस होता है अटेंशन सीकिंग, लोग मुझे पूछे, लोग मेरे तरफ ध्यान दे, लोगों को पता चले कि हम भी कुछ हैं। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, और इसकी ट्रेनिंग देनी है जो घर गृहस्थी वाले हैं माँ बाप, बचपन से ही अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देनी है। बचपन से ही बच्चा जैसे ही बीमार पड़ता है तो क्या होता है, सारे लोग उसकी चिंता में लगे रहते हैं, डैडी मम्मी सब उसका ख्याल, उसका वो जो अंदर का ईगो है वो बड़ा उससे तृप्ति मिलती है, उसको पता चल जाता है ये लोग मेरे तरफ ऐसे तो ध्यान देते नहीं, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो आई बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब लोग मुझे पूछते हैं क्या खाओगे। वैसे तो कोई पूछता नहीं, बस उसने वहां से ही मंत्र पकड़ लिया है, और जब वो बड़ा होता है तब ये ऐसे कुछ कुछ करते रहता है। इसलिए बच्चा अगर बीमार पड़ जाए, ध्यान रखना है, केयर करो, पर ज्यादा अटेंशन नहीं देना, उसको लगे कि मैं थोड़ा अकेला हूं संसार में, थोड़ा धक्का लगे उसको, थोड़ी चोट खाए, नहीं तो ये परिणाम होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अपनी बीमारियों का वर्णन करते रहना, जो आया जो नया व्यक्ति आया उसको सब कुछ सुनाना, मुझे क्या क्या हुआ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए। कल रात पूरा मैं सो नहीं सका, 2 बजे तक नींद आई, बाद में तो फिर नींद ही नहीं आई, और दर्द कितना ज्यादा था। अपनी बीमारियों का वर्णन ना करो, क्या होता है उससे नुकसान। हाँ, जो योग्य व्यक्ति है डॉक्टर के सामने वर्णन करो, पर जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जो ऐसे ही आके बैठते हैं उनके सामने वर्णन करना करना वो बीमारी का ही चिंतन, ऑब्सेशन हो जाता है, एक वो बीमारी मन को कैप्चर कर लेती है, दिन रात बीमारी का ही चिंतन चलता है। फिर बाबा ने कहा हेल्थ कॉन्शियसनेस क्या कर देती है, ये नर्वस कर देती है, रूहानी शक्ति से नर्वस कर देती है। हेल्थ कॉन्शियसनेस, दिन रात स्वास्थ्य की चिंता। वैसे हेल्थ कॉन्शियसनेस होना अच्छी बात है एक रीति से, स्वास्थ्य रहने के लिए, पर टू मच शरीर का ही सोचते रहना, बीमारी का ही सोचते रहना, दिन रात पागल हो जाना उसके लिए, ये कोई सोल कॉन्शियसनेस नहीं। तो सबसे पहला भाग्य कौन सा है हमारा, शरीर का। और एक इसमें जोड़ सकते हैं, यदि शरीर इतना मूल्यवान है तो हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, शक्तिशाली बनाना है, इसका स्टैमिना बढ़ाना है, ऊर्जावान बनाना है। ये शरीर में जो शक्तियां हैं उसे व्यर्थ नहीं गंवानी है। शरीर में भी बहुत मिराकुलस पावर है हीलिंग की, उसे वो हीलिंग होने देना। अगर कुछ हो भी जाता है तो सबसे पहला संकल्प ये हो, ये बीमारी आई तो क्यों आई, कहां से आई। अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, जो बच्चे बार बार अपनी ही गलती से बीमार पड़ते हैं बाप दादा उन्हें योगी और ज्ञानी बच्चे नहीं कहते। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं शरीर के साथ, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर बीमार जब हो जाता है तो सब ठप हो जाता है, ना आत्माभिमानी स्थिति रहती है, ना मन में श्रेष्ठ संकल्प उठते हैं, चिंतन किसका चलता है, बीमारी का, दवाइयों का, डॉक्टरों का, जांचों का, फोन करके एक दूसरे बताने का, अभी ये हो रहा है अभी वो हो रहा है, दिन रात वही चलते रहता है। इसलिए संगम युग पर स्वस्थ शरीर कैसे हो, इसका निरंतर चिंतन चालू रहे। प्रकृति के कौन से नियम हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तत्वों से बना हुआ है, तत्व तत्वों के नियमों का अगर उल्लंघन करे तो वो विकृत होंगे, बीमार होंगे। दूसरा भाग्य है मन का। मन का क्या भाग्य है? मन का भाग्य मन मना वो मन का क्या भाग्य है? मन कैसा होगा? हर्षित होगा। मन कैसा होगा? मुस्कुराता हुआ होगा। मन कैसा होगा? उस एक में सहज लगेगा। वो बहुत ही सुंदर शब्द मुरली में आया है, कौन सा? बाप के मोहब्बत के संसार में खोया रहेगा। कैसा होगा मन? बाप के मोहब्बत के संसार में। कितना सुंदर शब्द है, एक प्रभु प्रेम में डूबा रहेगा। संसार की आत्माओं को प्रभु ही पता नहीं तो उसका प्रेम की क्या बात करें। यहां तो उस परमात्मा प्रेम में मगन हो जाए, खो जाए, डूब जाए। वो अनुभूति केवल ब्राह्मणों को ही हो सकती है। ये भाग्य है कि हमें ऐसा मन मिला जो मन मना भाव है, जो ऐसा मन मिला जो किसी भी वस्तु और व्यक्ति के क्या क्या था मुरली में, लगाव और झुकाव में नहीं है। और ये सहज हो गया है। संसार के सारे व्यक्तियों का प्रेम एक तरफ, परमात्मा प्रेम एक तरफ। डिनाई योर मदर, डिनाई योर फादर, ईसा मसीह के वाक्य है। ये नहीं कह रहा है अकेले हो जाओ, अर्थात वो एक परमात्मा तुम्हारे साथ रहे बस, बाकी संसार एक तरफ, तुम एक तरफ और वो। और मन कैसा होगा? खुश, संतुष्ट। और क्या होगा? एक बाप दूसरा ना कोई। और मन में क्या होगा? हल्का होगा, भारी नहीं होगा। और मन क्या होगा? शुद्ध संकल्पों से भरा होगा। और मन में कोई थकावट, कोई बेचैनी, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं, अभय की स्थिति होगी। आज तक धर्मों ने हमको क्या सिखाया है? धर्म भीरु, गॉड फियरिंग बन जाओ, ईश्वर भीरु बन जाओ। पर धर्म प्रेम और फियर अपोजिट है। तो मन में क्या होगा? प्रेम होगा। इसलिए अब अपने आप निर्भयता की अवस्था आएगी, किसी से भी भय नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कफन पहन के निकल पड़े, कुछ भी नहीं है साथ में, निश्चिंत। ये निश्चिंतता बहुत बड़ा वरदान है ब्राह्मणों के लिए। तो दूसरा भाग्य है मन। तीसरा भाग्य है धन। धन का क्या? बहुत आएगा, भंडारा और भंडारी भरपूर। पर किनकी? किनकी? जो आवश्यकता अनुसार यूज करते। किनकी? जो जो मान और शान की इच्छा से परे है, जो नाम कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं मिलेगा। जो अपनी सेवाओं को निस्वार्थ किए जा रहे हैं, कोई मान की इच्छा नहीं है, कोई दूसरा मुझे देखे हमने ये सेवा की, इधर डालू, इधर मीडिया, उधर डालू, इधर एडवर्टाइज, इधर ब्रॉडकास्ट, सेवा इतुस दी छटाक भर की और उसका एडवर्टाइजमेंट बात मत पूछो। 5 मिनट का प्रोग्राम, 100 फोटो और देखो ये हमने सेवा की है। वो सेवा नहीं है, वो मैं का विस्तार है, वो मैं का शोरगुल है, वो मैं की आवाज है, वो मैं का प्रदर्शन है। सेवा कहाँ है उसमें? वो तो मैं है अंदर से, जो बाहर फूटना चाहता है कि देखो ये मैं कर सकता हूं। तो अपनी सेवाओं को गुप्त करते जाओ, अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाओ, अपनी सेवाओं का वर्णन ना हो। दूसरे करे तो ठीक है, हमको इतना करे। और संगम युग पर जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? वो कर रहा है। जैसे हमेशा उदाहरण दिया जाता है, टंकी पानी से भरी हुई है, इतने सारे नल है, कोई आके कहे नल तुम कितने अच्छे हो, इतना अच्छा तुम्हारा पानी आता है। नल महिमा नल की नहीं है, महिमा किसकी है? टंकी की। टंकी ऊपर है, उसने इस नल को चुना, भाग्य है, धन्यवाद उस टंकी का। तो इसमें अभिमान कैसा, इसमें अहंकार कैसा? इसलिए बाबा का कहा नाम मान शान की इच्छा ना हो तब सहयोग मिलेगा, और जब चाहे जिस समय चाहे अपने आप सहयोग आएगा. इट शैल बी गिवन अन टू यू एट दैट आवर. तब दिया जाएगा. अगर सच्ची दिल है और सच्ची आवश्यकता है तो क्या होगा, अपने आप धन मिलेगा, अपने आप पैसा मिलेगा. पैसों के पीछे जैसे संसार के लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, हमें भागने की जरूरत ही नहीं कि पैसा आएगा और जाएगा. लक्ष्मी चंचल है, उसमें कोई आकर्षण नहीं, उसमें कोई आसक्ति नहीं. और जो उसके पीछे भागते हैं वो तो और भागती है उनसे दूर. लक्ष्मी जो अनासक्त है, इधर से आएगा इधर से चला जाएगा, बहता है. क्या आकर्षण उससे. पैसों में भी एक ये होती है, मोहिनी. धन होता है ना व्यक्ति के पास, जब पैसे जेब जेब पैसे से भरे हो और पैसे खाली हो, उसके चेहरे से पता चलता है कि धन जो है, धन में पावर है. पर धन हमारी आसक्ति का कारण ना बन जाए, धन लोभ ना बन जाए. नीड और ग्रीड में अंतर हमें पता हो कि जो हम कर रहे हैं ये हमारी नीड है बस, कल की कोई फिक्र नहीं, अपने आप आ जाएगा और आएगा. तो तीसरा भाग्य कौन सा है, वेल्थ, धन का. हमें पागलों की तरह भागने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आएगा. और सबसे मुख्य, जहां पवित्रता बहुत ज्यादा है वहां चरणों में पैसा आके गिरेगा, अपने आप सेवाओं के लिए. किसी की खुशामत करने की जरूरत नहीं कि ये बहुत अमीर है इसके पीछे लगो ताकि ये थोड़ा सहयोग करे धन के. किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं. जहां पवित्रता निर्बाध है वहां अविरल धारा बहेगी धन की. चौथा, ये मुख्य है अब. ये है मुख्य टॉपिक. कौन सा टॉपिक, जन. जन अर्थात ये परिवार, इन निर्गुण हारों में बाबा. भक्ति में था मुझ निर्गुण हारों में, ज्ञान में आने के बाद ये निर्गुण हारे, तो क्या होगा इस परिवार की आत्माओं से, हिसाब चुकतू होगा. ये भी भाग्य है कि इन सब से क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा. कितने परसेंट से मिलेगा, 95 पर प्रॉब्लम, वो 5% है. और वो 5% 95 जैसा दिखाई देता है. स्नेह सहयोग सबसे मिल रहा है, परंतु कुछ कुछ है आत्माएं जो हमारी किस लिए आए हैं यहां पर. हमें संपूर्ण बनाने का दायित्व, जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर उठाई है, कंधों पर उठाई है कि हम इन्हें संपूर्ण बनाकर ही रखेंगे. और वो इसलिए क्या करते रहते हमारी बीच बीच में, अपना ज्ञान योग का समय का त्याग कर अपने महान चिंतन को, हमारे अंदर जो कमजोरी है उसके चिंतन में लगाकर हमें प्रेरित करते ताकि हम उन कमजोरी से छूट सके. इतना बड़ा त्याग उन आत्माओं का, तो कितना पहले तो धन्यवाद उन सबको कि जिनके द्वारा इस अंतिम जन्म के हमारे हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं. तो बाबा ने कहा जो बाप को राजी करने वाली आत्मा है वो भी इन आत्माओं के साथ भी क्या करेगी, वो उनको भी शुभ भावना और शुभकामना से बदलेगी. चाहे कितना भी विरोध करने वाला हो, कितनी भी निंदा करने वाला हो, उसके प्रति हमारे मन में घृणा नफरत कुछ ना हो, एक दिन उसको बदलना ही है. महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है. महात्मा बुद्ध निकले सुबह सुबह एक घर पर गए भिक्षा पात्र लेकर. दरवाजा खुला, वो गृहिणी थी. उस स्त्री ने इतनी गालियां दी सब तरफ की, जवान हो काम नहीं करते ऐसे वैसे ऐसे ऐसे सब कुछ जो सन्यासियों को दी जाती है. और वो कुछ ना बोले, निकल गए. दूसरे दिन वो फिर से आए और उसी घर के सामने खड़े हो. फिर से उसने दरवाजा खोला. अब तो गुस्सा काबू नहीं था. वो जो टोकरी थी कचरे की उसने सिर पे डाल दी. वो कुछ ना बोले, चले गए. तीसरे दिन फिर आए, उसी घर के सामने खड़े हो गए. एक ब्राह्मण व्यक्ति दूर से देख रहा था, रोज रोज ये हो रहा है और ये रोज आके खड़े हो जाते हैं. उससे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? शायद आज तो वो स्त्री अंगारा लेकर ही आ जाए, कुछ भी कर सकती है। वो कहती है, पहले दिन वो मुझसे नाराज हुई, पर नाराज तो हुई, कुछ तो किया उसने, कुछ तो दिया। और आदमी बदलते हैं, हर व्यक्ति वैसा ही नहीं रहता है, व्यक्ति बदलते हैं। वो स्त्री जैसे ही खोलती है, उसको पहले तो गुस्सा आता है, पर वो कहती है, आज तुम फिर आ गए। वो वही बात उससे भी कहते हैं कि तुमने कुछ तो दिया था और आज भी कुछ तो दोगे, दोगी। दिखाया है कि उनके संपर्क में आते ही उसका जैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है, रोने लगती है, उनको फिर भोजन खिलाती है। तो आत्माएं कैसी भी हो, एक ना एक दिन बदलेगी, कब ये नहीं बताया जा सकता है। टाइम जो है ना, ये नहीं बताया जा सकता, पर हमें अपनी शुभ भावनाएं कम नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो हमारी निंदा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने भी उसकी निंदा की थी। ये हिसाब चालू रहेगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। इसलिए बाबा ने यहाँ कहा, क्या कहा यहाँ पर, प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त। क्यों नहीं कहो कि ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कहा। ये कह दिया तो आगे क्या हो जाता है, फिर क्यों लग जाती है, और क्यों के फिर तुम कौन बन जाते हो, रचता। और रचता अगर बन गए तो क्या करना पड़ेगी, फिर पालना करना पड़ेगा तुमको, और उसमें क्या होगा, शक्ति जाएगी। ये ऐसा क्यों करता है, ये मेरी निंदा क्यों करता है, मेरी ग्लानी क्यों करता है, हम तो कितने अच्छे हैं, इसीलिए तो करता है, अच्छे ज्यादा बनाने के लिए, निखार लाने के लिए। हमें ज्यादा फायदा निंदकों से होता है या प्रशंसकों से, क्यों? प्रशंसा हमें बाह्य मुखी बनाती है, निंदा हमें अंतर्मुखी बनाती है। योग अच्छा लगता है योग अच्छा लगता है, योग में आह्वान कर लो, आज जिसको जिसको निंदा करनी है फटाफट आ जाओ, ताकि नुमा शाम का योग थोड़ा पावरफुल हो। योग अच्छा लगता है किसके साथ, पर उसके साथ या बाप के साथ? तो योगी अर्थात स्थिर, निंदा स्तुति जय पराजय सब में स्थिर। योगी अर्थात शुभ भावना से भरा हुआ, योगी अर्थात जिसे ये चिंता है कि मुझे अपने सारे हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। योगी अर्थात दूसरा चाहे कुछ भी करे, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, अप्रभावित, योगी की परिभाषा। तो और क्या कहा यहां पर, और क्षमा, अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है, क्षमा। तो तन मन धन जन चारों ही क्या है, भाग्य है, चारों ही परीक्षा है होगी, पर तन की भी, मन की भी, धन की भी और जन की भी, सभी से परीक्षाएं आएगी, पर भगवान साथ है तो पार कर जाएंगे। टीचर से क्या कहा बाबा ने, किसमें नहीं फंसना है, सोने की जंजीर है कि पिंजरा, सोना और दूसरा कौन सा, हीरा। क्योंकि ये जब रहता है तो इसमें से पहले निकलने की इच्छा नहीं होती है, और वो सजा हुआ है अच्छे से। किसी एक अव्यक्त मुरली 81 की है शायद, जिसमें बाबा ने कहा था, उड़ते पंछी हो, उड़ते रहो, नीचे नहीं आना, नीचे आए तो शिकारी शिकार कर लेगा। क्या करेगा, शिकारी शिकार कर देगा, इसलिए उड़ते रहो, स्वतंत्र पंछी हो, कोई भी बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी डायरी में लिख के रखना इस बात को, मुझे किसी का भी कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस, मुझे कोई बांध नहीं सकता, कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, मैं मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं। और क्या कहा टीचर से, वही बात जी हुजूर वाली, क्या करते रहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहो, तो वो हुजूर क्या हो जाएगा, हाजिर होगा, तुम बुलाओ और वो आएगा, ये उसका वादा है। फिर उसके बाद में अगला ग्रुप है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। क्या कहा उनको, महावीर हो और महावीरनिया हो, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस, लाइट अर्थात ज्ञान, माइट अर्थात योग, लाइट और माइट से भरे हुए संपन्न अर्थात पासवित ऑनर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान कम ना हो जाए, लोग जब परिस्थिति आती है तभी मुरली सुनना छोड़ देते हैं सोचते थोड़ा एकाग्र होके परिस्थिति का चिंतन करेंगे, तभी योग कम कर देते, सोचते थोड़ा इस प्लानिंग करेंगे कैसे इसको टैकल किया जाए, उसी समय तो ज्ञान योग को बढ़ाना होता है। तो ज्ञान और योग से संबंध संपन्न अर्थात पासवित ऑनर, जिस समय फुल पेपर में राइट समय में पास होना अर्थात पासवित ऑनर। उदाहरण दिया ना, एक सब्जेक्ट में पास फेल तो अगले साल जाना होता है। तो ये एक, और क्या कहा, तैयार, तैयार हो, एवर रेडी हो। ये बार बार हमने कई बार सुने हुए सारे शब्द है, ये खाली शब्दों को नहीं पकड़ना है, उन शब्दों की गहराई में जाना है। रेडी अर्थात क्या, अभी इसी वक्त अगर कोई कहे कि आज की रात अंतिम रात है, आज की रात अंतिम रात है, तो कल सुबह 6 बजे, ऐसे मेडिकल में बहुत सारे लोगों की स्टडी होती है जिनको सांप काटता है, जो डूबते डूबते मर बच गए, जो एक्सीडेंट में बच गए, सांप काट जिनको काटा और बच गए, भयंकर काट, कोबरा सामने आया और काट दिया, एक एक्सीडेंट बिल्कुल अभी उसके नीचे ही आ गए, गाड़ी के नीचे, और बच गए, डूबते डूबते बच गए। उन्होंने अपने अनुभव सुनाया कि जीवन की अंतिम वेला जैसे वो मोमेंट था, उसमें हमें जीवन का सब कुछ दिख गया, फ्लैश हो गया पूरा, सारी घटनाएं दिख गई उसे एक पल में, और एक ऐसा पश्चाताप आया कि मैंने जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं, एकदम सांप आ गया सामने और ऐसा काटने ही वाला है, उस एक पल में जीवन के सारे दृश्य दिखाई देने लगे, फिर बच गए, फिर भूल गए, फिर वही जीवन चालू। तो अंतिम घड़ी है, तैयार, यही रात जैसे अंतिम रात है। क्या क्या किया अब तक इस जीवन में, क्या वो सब किया जो भगवान ने कहा था, उसकी हर श्रीमत जीवन बन जाए। ऐसे कैसे साहबजादों और साहबजादियों को, ऐसे उड़ते पंछियों को, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता, विधाता मास्टर दाता आत्माओं को, ऐसे 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 हेल्थ कॉन्शियस से मुक्त सोल कॉन्शियस आत्माओं को, ऐसे नर्वस ना होने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी शक्ति वाली आत्माओं को, ऐसे जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे चिल्लाना नहीं चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे मन मनाभाव वाली आत्माओं को, ऐसे मुस्कुराती आत्माओं को, ट्रस्टी धन के प्रति, मेरा नहीं है भगवान का है, उसके कार्य में लगाना है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्माओं को, हिसाब को किताब को चुप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न आत्माओं को, ऐसी फुल मार्क्स से पास होने वाली पासवित ऑनर आत्माओं को, ऐसे इच्छा मात्र अविद्या आत्माओं को, ऐसे नाम और शान की कामना से मुक्त आत्माओं को, ऐसे 5% को भी संतुष्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे महावीर महावीरनी आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, ऐसे ज्ञानी योगी आत्माओं को, ऐसे सत्य की नाव पर जो सवार है ऐसी आत्माओं को, ऐसे हाँ जी हुजूर करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रसन्नचित आत्माओं को, प्रश्नचित से मुक्त आत्माओं को, ऐसे सोने के और हीरे के पिंजरे से भी मुक्त स्वतंत्र आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।